आगे अब एक और आयत है जो बड़ी जामे आयत है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, और अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ सलूक और एहसान करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिसकीनों से और कराबतदार हमसाए से और अजनबी हमसाए से और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से और इससे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं, गुलाम और कनीजें। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले शेखी खोर को पसंद नहीं करता। वो लोग जो बखीली करते हैं खुद भी और दूसरों को बखीली करने को कहते हैं, अल्लाह ताला ने जो अपना फजल इन्हें दे रखा है उसे छुपा लेते हैं। हमने इन काफिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है, और वो लोग जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिनका हम नशीन और साथी शैतान हुआ, वो बदतरीन साथी है। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाह वल यौमिल आखिर, भला इनका क्या नुकसान था कि अगर ये अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ताला ने जो इन्हें दे रखा है वो इसमें से खर्च करते। अल्लाह ताला इन्हें खूब जानने वाला है। इन्नल्लाह ला यस्लिमु मिसकाला ज़र्रा, बेशक अल्लाह ताला एक जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो तो इसे दुगनी कर देता है और खास अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देता है। ये थी आयत नंबर 36 से 40, 36 से 40। इनका उन्वान है अल्लाह ताला से ताल्लुक बंदों से मामले में झलकेगा। इसी से मिलता वसूल हमने बारे के आगाज में देखा था कि इस आयत में ये जवामिउल आयात में से है, उम्महातुल आयात में से है, और हर दौर में यही अहकाम दिए गए कि अल्लाह का हक अदा करो और उसके बाद फिर इंसानों के हक अदा करो। आज देखा जाए कि इंसान के पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, तो क्या ये इस बात का तकाजा नहीं करता कि इंसान अपना सब कुछ रब को दे दे, उसकी इबादत में जिए, उससे मोहब्बत करे, उसके आगे झुकने लगे। और जो बंदा अल्लाह ताला के साथ इस तरह का ताल्लुक कायम करता है ना, तो उसका ये ताल्लुक फिर बंदों से मामलात में झलकता है। जो अल्लाह के सामने छोटा हो जाता है ना, फिर वो बंदों से इंसानों से ताल्लुकात में भी आजिज मिजाज बन जाता है। फिर उसका मिजाज माँ बाप के साथ फिर अक्खड़पन का नहीं होता, वो उनको देख के घुराता नहीं है, वो उनको देख के घूरता नहीं है। इसी तरह जिस बंदे से उसका वास्ता पड़ता जाता है, वो बंदा उस बंदे के साथ इस तरह ताल्लुक रखता है कि गोया के ये मेरे सामने अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान का पर्चा है, फिर वो लोगों से अच्छा होता है। हमारे यहाँ आज के दौर में एक तस्वुर उभरता है कि जो जितना दीन पे होगा वो दुनिया वालों के साथ उतना ही अक्खड़ होगा, और दीन तो जी डंडे के बगैर आता ही नहीं, और जी हिफ्स तो डंडे के बगैर होता ही नहीं, और दीन तो सख्ती का नाम है, दुरुस्तरी का नहीं है। क्यों आज अल्लाह के आगे झुकने वाले माथों पे गट्टे पड़ गए, बंदों के सामने अक्खड़ है? क्यों दीनदारों की तरफ से बीवियों के ऊपर जुल्म की कहानियां आम है? क्यों घर वालों के सामने वो एक ऐसे जाबिर शख्स की तरह पेश किए जाते हैं कि घर में आए तो सभी लोग परेशान हो जाएं? इसकी वजह यह है कि वो दीन असल दीन नहीं। असल दीन क्या है कि बंदा अपने आप को रब के सामने झुका दे, फिर उसके अंदर फख्र नहीं आ सकता, फिर उसको जो मिलता है वो उसको अल्लाह की नेमत समझता है, फिर वो उसमें दूसरों का हक समझता है, और ऐसा शख्स जो है वो बुखल करने की बजाय अपने माल को बंदों के लिए खोल देता है। ऐसा बंदा ही अल्लाह के सामने कल सुरखरू होगा। इसके बरक्स वो लोग जो शैतान के हुक्मों पे चलने वाले हैं, फिर कल क़यामत के दिन वो अपने आप को बहुत ही घाटे में पाएंगे। ऐसे ही एक दिन का तذکرہ अगली आयात में है, फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, बस क्या हाल होगा उस दिन जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बनाकर लाएंगे। यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीन कफरू, जिस रोज काफिर और रसूल के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश इन्हें जमीन के साथ बराबर कर दिया जाए और अल्लाह ताला से कोई बात न छुपा सकेंगे। ऐ ईमान वालो, तुम नशे में मस्त होकर नमाज के करीब भी न जाओ जब तक कि अपनी बात को समझने ना लगो, और जुनाबत की हालत में जब तक कि गुसल ना कर लो। अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात है, और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या तुम में से कोई कजाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो और तुम्हें पानी ना मिले, तो पाक मट्टी का कसद करो और अपने मुंह और अपने हाथ मल लिया करो, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। ये थी आयत नंबर 41 से 43। इसके भी आप लिखेंगे डिफरेंट टॉपिक। पहला उनवान है काश जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। दूसरा टॉपिक है खुद तो हाजिर हो दिल को भी हाजिर करो, और तीसरा टॉपिक है गैर मामूली हालात में गैर मामूली रुख्सतें। पहली चीज़ क़यामत के बारे में थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को पढ़कर बहुत रोए, बहुत रोए, क्योंकि इंसान तो इंसान, कल नबियों का भी मुहासबा होगा। अल्लाह ताला अंबिया कराम को पूछेगा कि बताओ तुम्हें जो पैगाम दिया था तुमने उसको पहुंचा दिया, اور ساری زندگی انسان اس بارے میں فکر کرتا رہے، اس کی تفسیر آپ احسن البیان میں پیج 223 یا پھر آپ کے پاس جو بھی ایڈیشن ہے انہی آیتوں کی تفسیر میں پڑھیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ رک گئے اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ترتی. آپ کو اس بات کا بڑا ملال تھا کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپی ہے کیا میں اس کا حق ادا کر پا رہا ہوں. آج ہم سب کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آج ہم امت مسلمہ ہونے کے ناطے شہادت حق کی گواہیاں دینے کے لیے جو ہمیں مقرر کیا گیا، تو کیا ہم وہ حق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ورنہ یاد رکھیے کہ جب کل قیامت آئے گی تو انسان پریشان ہوگا. آج وہ لوگ جو بڑے بنے پھرتے ہیں، کل وہ بالکل حقیر ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جن کو آج چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، کل وہ لوگ پیچھے ہوں گے. اور بعض وہ لوگ جن کو لوگ دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، کل ان کی گواہیوں پہ لوگوں کے جنت یا جہنم میں جانے کے فیصلے ہوں گے، اور وہاں لوگ خود تو خاموش ہوں گے لیکن ان کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ بول رہے ہوں گے. اور اس دن کی رسوائیوں سے بچنے کے لیے انسان چاہے گا کہ کاش لو تسوا بہم الارض، کاش زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلی جاؤں. اور وہ بولتی ہوئی زبانیں جو آج تھمتی نہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ولا یکتمون اللہ حدیثا، کوئی اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا. ضرورت اس بات کی کہ آج کسی انسان سے معاملہ بھی کرنا پڑے تو اس سوچ کو سامنے رکھیں کہ آج میری بولتی ہوئی زبان، میری چرب زبان اگر دوسرے کو مجرم اور مجھے بے گناہ ثابت کر بھی دے گی تو کل کیا ہوگا؟ آج دنیا میں یہ بہت آسان ہے. آپ خوب اپنی صفائیاں پیش کریں، آپ خوب اپنے آپ کو سچا ثابت کریں، لوگ مان جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کل اگر آپ جھوٹے تھے تو یہ پول کھل جائے گا. اس کے بعد دوسری بات نماز کی تھی. شراب کی حرمت کے سلسلے میں یہ ایک تدریجی آیت ہے کہ جب حرمت کا پہلا حکم اتر گیا کہ شراب میں اتنا نفع نہیں، بہرحال کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ لوگ اشارہ سمجھ گئے، انہوں نے شراب چھوڑ دی. کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی حرام نہیں ہے، پیتے رہے. ہر دور میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، کوئی حکم سن کے لوگوں میں سے دو تین گروہ بن جاتے ہیں. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت بات سننے والے الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک کی جذب کی کیفیت الگ ہے، دل میں آنے والے ارادوں کی نیت الگ ہے. ہر ایک بندہ مختلف انداز سے سن رہا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ پہلے مرحلے پہ سمجھ جاتے ہیں، کچھ دوسرے پہ آتے ہیں، کچھ تیسری چوٹ نہیں سہ سکتے. ایک موقع ایسا آیا کہ شراب کی حالت میں نماز پڑھی، اب نماز میں کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ یہ کہہ دیا کہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. اور جب اللہ کی توحید پہ زد آتی ہے تو پھر اللہ بھی خاموش نہیں رہتا، نہ اللہ کا نبی خاموش رہتا ہے. اس کی ایک دلیل غزوہ احد کے واقعات میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو لہٰذا پھر یہ حکم آ گیا کہ دیکھو اب نماز پڑھتے وقت ہوش کیا کرو، کہتے کیا ہو. بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک شراب کا حکم ہے، لیکن اس میں کتنی بڑی بات ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ سب ہائی لائٹ کریں گے. آیت کا نمبر بولوں گی، حصہ بولوں گی، آپ ہائی لائٹ کریں گے. حتی تعلموا ما تقولون، بس یہ چار لفظ ہائی لائٹ کر لیں. آیت نمبر 43، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہتے ہو. شراب کی حالت میں یا نشے یا نیند کی حالت میں نماز پڑھنے سے جو روک دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو کہہ رہے ہو اس کو جانو. تو ذرا بتائیے، جو نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہم اس میں کتنا جانتے ہیں؟ کیا جو لفظ ہماری زبان سے آتے ہیں ہم اس کو جان رہے ہوتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ تیری نماز میں سے بس اتنا ہی قبول ہے جس میں تیرا دل حاضر ہے. ہم سب اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، تبھی تو یا کا نعبدو و یا کا نستعین کے دعوے ہیں، لیکن عملی زندگی اس سے فرق ہے. نیت کیجئے، اس موقع پہ اپنے لیے ایک عمل کی بات لکھیے کہ میں نے اس رمضان میں اپنی نماز کو درست کرنا ہے. اور یہاں پھر کہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی نماز نبوی کا لنک میرا خیال ہے کہ آج کل میں ویب سائٹ پہ آ جائے گا، آپ اس کو سن کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جگہ سے بھی مل سکتا ہے آپ کو. کہ ایک بک بھی ہے، بہت پیاری، بہت آتھینٹک کتاب ہے، نماز نبوی. اسی کو ابھی ہم نے ناروے کے کورس میں ایک ڈفرینٹ سٹائل سے پڑھا تھا، یعنی ڈسکشن کے پوائنٹس اس کے اندر سے لیے تھے. ایک دفعہ ضرور اپنی نمازوں کو دیکھیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، حسن المسلم کو لے لیں، اس میں سے نماز پڑھیں، لیکن آج اس چیز کی نیت کریں کہ میں نے نماز کا ترجمہ ضرور یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اگلی بات جو تھی وہ تیمم کی ہے. ایک وہ کیفیت ہے کہ وضو کے دوران ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، یہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی نہ چھوئے اور آپ کا پورا وضو ہو جائے، بلکہ غسل بھی ہو جائے. یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی حکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. یہی ہے وہ بات جو پیچھے ہم پڑھ چکے تھے نا، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے اور اللہ تمہیں وہ طریقے دیتا ہے جس میں تمہارے لیے آسانی ہے. تو کیسے رب کے لیے محبت سے ہم الحمدللہ نہیں کہیں گے؟ کہ جب ایک بیمار ہے، پانی استعمال کرنے سے تکلیف ہو سکتی ہے، کہا تم تیمم کر لو، اور پانی نہیں ہے، نماز چھوڑ دو، نہیں، تیمم کر لو. اللہ تعالی ہمیں ایسے پیارے دین کی قدر کرنے والا بنا دے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है? वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है और अल्लाह ताला का दोस्त होना काफी है और अल्लाह ताला का मददगार होना बस है। बाज़ यहूद कलेमात को इनकी ठीक जगह से हेर फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और नाफरमानी की, और सुन इसके बगैर के तू सुना चाहे और हमारी रियायत कर, लेकिन इस कहने में अपनी जुबान को पेच देते हैं और दीन में ताना देते हैं। और अगर ये लोग कहते कि हमने सुना और हमने फरमाबरदारी की और आप सुनिए और हमें देखिए, तो ये इनके लिए बहुत बेहतर और नहायत ही मुनासिब था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके कुफर की वजह से इन्हें लानत की है, बस ये बहुत ही कम ईमान लाते हैं। ये थी आयत नंबर 44 से 46, 44 से 46। इसका उनवान है खुद बदलते नहीं, किताब को बदल डालते हैं। अल्लाह सुबहाना तआला ने यहूद को किताब दी कि तुम इसके मुताबिक लोगों की रहनुमाई करो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये किताब उनकी ख्वाहिशों पर पाबंदी लगाने वाली हो गई, तो उन्होंने बजाय इसके कि उस किताब के मुताबिक खुद को बदलते ढालते, उन्होंने उस किताब को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बदलना शुरू कर दिया। और किसी कौम के जवाल की ये अलामत है कि अल्लाह के पैगाम को बदल दे अपनी ख्वाहिशों को सच्चा करने के लिए, अपने अजायम को साबित करने के लिए। ऐसे लोग फिर दुनिया में इस काबिल नहीं रहते कि अल्लाह ताला लोगों की रहनुमाई के मनसब पर उनको फाइज कर दे। ऐसे लोगों के हाथ से अल्लाह ताला ने नबुव्वत को लेके उम्मते मोहम्मदिया को दिया, और आज अफसोस की बात है कि उम्मते मोहम्मदिया में भी कई लोग इसी जुर्म का शिकार हो गए। उन्होंने किताब को अपनी ख्वाहिशों की किताब बना लिया। अल्फाज को तो नहीं बदल सकते, जबर जेर नहीं बदल सकते, लेकिन उसके मानी और मफहूम को बदलने लगते हैं। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला ने कहा कि ये पूरी किताब नहीं बल्कि मिनल किताब दिए गए। ये मिनल किताब का जो बात इस आयत में आई, आयत के अंदर से मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहूंगी जी। पहली ही आयत है 44, ऊतु नसीबम मिनल किताब। मिन कहते हैं बास को, सम ऑफ पार्ट, तबीज का होता है। पूरी किताब नहीं मिली थी यहूद को, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह की किताब के अल्फाज तो मिले थे, लेकिन अमल करना जो मकसूद था वो उन्होंने नहीं लिया। आज भी हर हामिले कुरान और साहिबे कुरान अगर उस कुरान पे अमल नहीं कर रहा, और बावजूद इसके कि उसकी लफाजी पे लोग खुश हैं, लोग उसके ऊपर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और क्या क्या कहते हैं, लेकिन जिस किताब के बोले हुए लफ्जों पे कहने वाले का अमल नहीं, तो वो किताब नहीं, वो मिनल किताब है। और अल्लाह ना करे कि हम में से कोई इस पूरे दौरे कुरान को कर जाए और वो तो कहे कि मैंने किताब पढ़ी, और अल्लाह कहे तुमने मिनल किताब पढ़ी। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हीं की इन साजिशों को खोल दिया कि जो उन्होंने अल्लाह के कलाम को सुन के नाफरमानी का रवैया अख्तियार किया, बल्कि उम्मते मोहम्मदिया के लिए उन्होंने रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। होता भी ऐसे ही है, जब बंदा किसी चीज से अपने आप को दूर करता है ना, जब उसकी सोच बदलती है, तो वो ये नहीं चाहता कि मेरी सोच बदले, वो दूसरों की भी बदलने चाहता है। खवातीन को आप देखिए कि कोई प्रोडक्ट खरीदती है ना, अब किसी दिन वो अच्छा नहीं निकला, हो सकता है कोई अपनी ही गलती हो सकती है, फिर वो 10 सहेलियों को बताएंगी ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं, अब क्वालिटी इन्होंने खराब कर दी, अब ये चाय की पत्ती का रंग नहीं है, मैं तो वो दूसरी ले रही हूँ। यही जुर्म यहूद से हुआ। इन्होंने खुद तो नहीं मानना था, ना मानते, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के नुमाइंदे बन के आए, तो इन्होंने आपके खिलाफ शोशे उठा दिए कि देखो ये कैसी तालीमात है, ये तो लगता है कि हमारे खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं, हम कहते हैं औरतों को हैज में छोड़ दो, ये कहते हैं उनके साथ ताल्लुक कायम करो। इस तरह के शोशे फैलाने वालों को अल्लाह ताला ने बेहिस कर दिया। यहाँ लानत का लफ्ज है, वलाकिलानहुमुल्लाह, इसको हाईलाइट करेंगे आप भी, 46 आयत के अंदर है। लानत क्या होती है? बेहिसी की आखिरी कैफियत, कि जब बंदा इतना बेहिस हो जाए कि हक और ना हक की तमीज ही मिट जाए, इसको लानत कहते हैं। ये असल में वही बात है कि आप जिस चीज को जिस एंगल से देखते हैं, फिर आपको वो वैसी लगती है। आज जो लोग कुरान से दूर होते हैं ना, उनको कुरान वाकई दुनिया की एक फालतू चीज दिखती है। अल्लाह ना करे कि हम इतने बेहिस हो जाएं कि इस कलाम की जरूरत हमें अपनी जिंदगियों में ना रहे। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिकन लिमा मअकुम। ए अहले किताब, जो कुछ हमने नाजिल फरमाया है और जो इसकी तस्दीक भी करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इस पर ईमान लाओ इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और इन्हें लौटा कर पीठ की तरफ कर दें, या इन पर लानत भेजें जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की और है अल्लाह ताला का काम किया गया। इन्नल्लाह खला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करे, इसने बहुत बड़ा गुनाह और बुख्तान बांधा है। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी और सताइश खुद करते हैं, यानी तारीफ, बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहे पाकीज़ा करता है, किसी पर एक धागे के बराबर भी जुल्म न किया जाएगा। देखो ये लोग अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं, ये हरकत सरीह गुनाह होने के लिए काफ़ी है। ये थी आयत नंबर 47 से 50। इसका उन्वान लिखेंगे, जन्नत में दाखला कानून अदल के तहत, ना के खुशफहमियों पर। यहाँ फिर वही तस्करा है जिसका पीछे जिक्र सूरत बकरा में भी हो चुका। यहूद कहते थे कि वी आर चोजन पीपल, हमें जो अल्लाह ने दे दिया है बस ये किसी और को नहीं देगा, और जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ हम ही जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तुमने जन्नत की कीमत चुका दी? क्या तुम जन्नत में जाने के काबिल हो गए हो, या तुमने अपनी खुशफहमियों की जन्नत बना रखी है? हकीकत ये है कि बाज़ दफ़ा इंसान किसी वक्त अपनी ख्वाहिशों की ही जन्नत बना के बैठ जाता है, और उसका ख्याल होता है कि जो मेरी ख्वाहिश पे चलेगा वही उस जन्नत में जाएगा। तो जन्नत किसी का नस्ली वतन नहीं, ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह ने अपने ईमान वालों के लिए पैदा किया है। और कोई शख्स अपने आप को किसी नाम से मुंसलिक करके कहे कि इस ग्रोह और इस नाम के साथ जुड़ोगे तो जन्नत में जाओगे, ऐसे लोग जो हैं असल में अल्लाह ताला के प्लान को समझ नहीं पाते। हमारे लिए इसमें अमल की यही बात है कि अपने आप को पाक समझने की बजाय अपने आप को पाक करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज जहाँ शिर्क के बारे में हुई, क्योंकि शिर्क ही वो गुनाह है कि जो इंसान से दूसरे काम करवाता है, अल्लाह ताला हमें शिर्क और शिर्क की तमाम कबाहतों से महफूज रखे। अब शिर्क वाले मुआशरे में क्या क्या गंदगियां होती हैं उनका तस्कर आगे आएगा। अलम तर इल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला, जो बुत का और बातिल माबूद का एतिकाद रखते हैं और काफिरों के हक में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज्यादा राह रास्त पर हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिसे अल्लाह ताला लानत कर दे तो तू इसका कोई मददगार न पाएगा। क्या इनका कोई हिस्सा सल्तनत में है? अगर ऐसा हुआ तो फिर ये किसी को एक खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी कुछ न देंगे। अम यक्सुदूनन्ना सालामा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, या ये लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से इन्हें दिया। बस हमने तो आले इब्राहिम को किताब और हिकमत भी दी और बड़ी सल्तनत भी अता फरमाई, फिर इनमें से बास ने तो इस किताब को माना और बास इससे रुक गए, और जहन्नुम का जलाना काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफर किया, इन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे, जब इनकी खालें पक जाएंगी हम इनके सिवा और खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहे। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता अमल किए, हम अन करीब इन्हें अपनी जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहाँ साफ सुथरी बीवियाँ होंगी, और हम इन्हें घनी छाँव और पूरी राहत में ले जाएंगे। ये थी आयत नंबर 51 से 57। इनका उन्वान है, जवाल याफ्ता कौमें, अमल की बजाय अमलियात और सिफली आमाल के पीछे। अल्लाह ताला ने यहूद को चुना, तौरात दी, खूबसूरत किताब थी, उस पे चलते तो ज़िंदगी अच्छी रहती, तौरात बदल दी, हुक्म छोड़ दिए। अब ज़रूरत थी कि कुछ ना कुछ तो लोगों को दीन के नाम पे पेश किया जाए, तो उन्होंने कुछ कहानियाँ घड़ी, कुछ फ़ज़ाइल व आमाल, कुछ तवहमात, कुछ जंतर मंतर और दीन के नाम पे लोगों में पेश कर दिए। वो लोग जो असल किताब के पास नहीं आते, फिर अपने गिल्ट को दूर करने के लिए ऐसा ही दीन अपनाने लगते हैं। ऐसे दीन के अंदर अमल का कोई दखल नहीं होता। वो ये नहीं कहते कि अमल करो, अमल बदलो, ये छोड़ो, वो करो, गुनाहों से हिजरत करो, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये वजीफा पढ़ लो तो ये सवाब, ये कर लो तो ये अजर, इस दरवाजे से गुजर जाओ तो जन्नती, और ये पानी पी लो तो तुम ये और वो। अब ये दीन आसान होता है। आप देखिए कि जहां अमल पे जद ना पड़े तो वहां कौन ना जाएगा, गिल्ट तो अंदर है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह का, जब अल्लाह की जगह दिल में ना बनाई, गैर का दीन लिया, नतीजा क्या हुआ कि फिर वो खुशफहमियों की जन्नत में रहने लगते हैं। वो खुद जन्नत के टिकट बांट रहे होते हैं। उनका ख्याल होता है कि जन्नत हमारा मुल्क है, हम जिसको चाहें जन्नत में भेज दें, जिसको ना भेजें। और ऐसे दीन के आम होने का एक नतीजा है कि लोग अमल से दूर हो जाते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा से भी ये जुल्म हुआ। आज उम्मत में जो बेदीनी दिखती है, अमल से दूरी है, उसकी वजह क्या है कि ख्वाहिशों का दीन बड़ा फैला हुआ है। ऐसे दीन को फैलाने वाले बहुत बड़े मुजरिम हैं। लोग सिर्फ ये नहीं कहते कि हम चलो भाई एक दिन खास मौका हुआ जहां उर्स पे जमा हुए और हमने ये अमल कर लिया, वो एक दिन का अमल नहीं रहता, वो पूरे अगले साल तक वो इस खुशफहमी में रहते हैं कि कोई बात नहीं, इस साल गुजर गए, अगले साल फिर गुजर जाएंगे, ये आयत पढ़ लेंगे तो ये मसला हल होगा। और होता क्या कि नफ्स की ख्वाहिशात और शैतान की तरगीबात पर चलते हैं। ऊपर दीन का लेबल है, अंदर प्रोडक्ट खराब है, धोखा नहीं है। बाहर आप कुछ लिखें, अंदर कुछ हो, क्या ये दीन है? इसके बरक्स जब अल्लाह का सच्चा दीन आता है, लोगों के अमाल पे जद पड़ती है, उस वक्त असल इम्तिहान होता है, कौन है जो अमल की कीमत पे जन्नत लेने वाला है और कौन है जो ख्वाहिशात की कीमत पे जन्नत लेने वाला है। अमल की कीमत पे जन्नत तो मिलेगी रब की जन्नत, और ख्वाहिशात वाले को मिलेगी खुशफहमियों की जन्नत, जहाँ कुछ भी नहीं बल्कि एक आग होगी जो आग इनके जिस्मों को गला देगी, और दिन में 70-70 बार उनकी खालें बदली जाएंगी। किसी को जलने का अल्लाह ना करे अगर तजुर्बा हुआ तो आप देखिए कि कच्ची खाल बड़ी तकलीफ दे होती है। आज भी अगर कहीं जख्म छिल जाए ना तो आप पानी के नीचे हाथ रखें तो ऐसे लगता है कि आग लग गई। और वो लोग जिनकी खालें और जिनकी स्किन अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं थी, अल्लाह उनको गला के दोबारा बदलेगा, और एक एक दिन में कई बार होगा, फिर पता चलेगा कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। एक साथी थी, कहीं मुझे मिली, नाम नहीं लूंगी, लेकिन किसी दूसरे मजहब से रिवर्ट होके इस्लाम पे आई, और वो मजहब हमारे ही मुल्कों में है बहुत, उर्दू बोलने वालों ही का था। अपने उस दीन की बातें सुनाने लगी, बार बार जो बात उसकी जुबान पे थी उसका खुलासा क्या है, किसी पे अल्लाह बड़ा ही रहम करेगा तो वो उस दीन को छोड़ेगा, वरना तो बस कोई नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों, क्या कहते हैं वो? कहती वो कहते हैं हज की कोई जरूरत नहीं, तो मैं एक साल में एक दफा अगर अपने इमाम को देख लोगे तो तुम्हारा हज हो गया। और मेरे पास यहाँ मैं नहीं लेके आई हुई, मैंने अपनी किसी क्लास में एक पढ़ के भी सुनाया था, पूरा मेरे पास एक पेज किसी ने भी दिया कि उनके अकायद और उनके अपने नाम स्टैम्प के साथ उनके इदारे उनकी जगह का नाम नीचे लिखा हुआ, इसलिए मैंने भी पढ़ने की जरूरत की कि चले उनकी कुछ मदद ही है, उनका पैगाम मामो, हज की जरूरत नहीं, हमारा हज इमाम को देखना है, रोजों की जरूरत नहीं क्योंकि रोजा तो दिल का होता है, पर्दे की जरूरत नहीं इसलिए कि पर्दा तो दिल का है। यानी इतनी आसान शरीयत, हर हफ्ते वो कहती है 5 रुपए कितने जाके हमें देने पड़ते हैं, कहती इतनी रंग रौनक है, इतनी रंगीनी है कि बाजी कोई छोड़ ही नहीं सकता उस दिन को। मैं कहती तुम कैसे छोड़ के आई? कहती ये बस अल्लाह का एक इनाम था, अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दिया, और आज भी मेरे खानदान वाले कहते तुम कितनी पागल हो, ये तुमने क्या अपनी जान पे मुश्किल डाली है। उनके दीन में जिना जायज, उनके दीन में औरतों का बेपर्दा फिरना जायज, लेकिन माल कितना देते हैं वो अपने इदारों को, अल्लाह अकबर। कहने लगी कि अगर ये लोग मुसलमान हो जाएं, ये जितनी मस्जिदें ऐसे पड़ी हुई ये सब बन जाएं, और हम लोग तो 2.5% नहीं देते, वो गालिबन 25% अपने माल का अपनी जगहों को देते हैं। ये है ख्वाहिशों वाला दीन, और ऐसी खुशफहमियों की जन्नत दुनिया में तो बन सकती है लेकिन अल्लाह के पास ऐसी कोई जन्नत नहीं। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इन्हें पहुंचाओ, और जब लोगों का फैसला करो तो अदल और इंसाफ से फैसला करो, यकीनन वो बेहतर चीज है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है, बेशक अल्लाह ताला सुनता है और देखता है। ऐ ईमान वालों, फरमाबरदारी करो अल्लाह की और फरमाबरदारी करो रसूल की और तुम में से इख्तियार वालों की, फिर अगर किसी चीज में इख्तलाफ करो तो इसे लौटा दो अल्लाह ताला की तरफ और रसूल की तरफ, अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान है। ये बहुत बेहतर है और बाएतबार इंजाम के बहुत अच्छा है। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिनका दावा तो ये है कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया इस पर इनका ईमान है, लेकिन वो अपने फैसले गैर अल्लाह की तरफ ले जाना चाहते हैं। हालांकि इन्हें हुक्म दिया गया कि शैतान का इनकार करे, शैतान तो ये चाहता है कि इन्हें बहका कर दूर कर दे। जब इनसे कहा जाए कि अल्लाह के नाजिल करदा कलाम की और रसूलुल्लाह की तरफ आओ, तो आप देखेंगे कि ये मुनाफिक आपसे मुंह फेर कर रुके जाते हैं। फिर क्या बात है जब इन पर इनके करतूत के बायस कोई मुसीबत आ पड़ती है, फिर ये आपके पास आकर अल्लाह की कस्में खाते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ भलाई और मेल मिलाप का ही था। उलाइकल्लज़ीना यालमुल्ला, ये वो लोग हैं कि इनके दिलों का भेद अल्लाह ताला पर बखूबी रोशन है। आप इनसे चश्म पोशी कीजिए, इन्हें नसीहत करते रहिए और इन्हें वो बात कहिए जो इनके दिलों में घर करने वाली हो। وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, ये थी आयत नंबर 58 से 63। इनका उनवान है, दो टॉपिक इसके लिखाऊंगी, इख्तलाफ़ राय की आज़ादी है मगर इज्तमाई फैसले को ना मानने की आज़ादी नहीं। यानी हर बंदा इख्तलाफ़ राय कर सकता है, किसी बात में इख्तलाफ़ राय हो मोस्ट वेलकम, लेकिन जब कोई इज्तमाई फैसला हो जाए तो फिर उसको ठुकरा नहीं सकते। ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक लिखिए, इज्तमाई निज़ाम मुस्लिम मुआशरे की इज्तमाई ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत आयात है जिसका पैगाम क्या है कि अल्लाह ने हर एक को कुछ जिम्मेदारी दी, और हर जिम्मेदारी एक अमानत है, और अमानत को अदा करना लाजिम है। इसी तरह हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को निभाए, जो जहाँ करने का हुक्म है उसको करे, चाहे दोस्त है या दुश्मन, इंसाफ का दामन ना छोड़े। ये ना हो कि हक की वजह से अपनी जात को नुकसान है तो उसको छोड़ दिया जाए और दूसरे को नुकसान है तो पकड़ लिया जाए। यही कानून फर्द के लिए है, यही हुकूमत के लिए। वो कानून बने जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हों और वो सब छुट जाए जिसको छोड़ने का हुक्म हो। फिर इसके बाद जो दूसरी बात इसमें है कि अल्लाह के नबी सल्लम जब मक्का से मदीना में आए तो आपने यहूद को उनके पिछले दीन पर रहना उसकी इजाजत दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी थी। आपने उस वक्त के नॉन मुस्लिम यानी अकलियतों मिनोरिटीज को एक अख्तियार दिया मजहबी आजादी का, और वो आजादी क्या थी कि दो अदालतें बनी, एक मुसलमानों की अदालत थी, एक यहूद की अदालत थी। मुसलमानों का कोई मुकदमा होता तो मुसलमान उस अदालत में आते जिसके सरबरा नबी सल्लम थे। दूसरा मुकदमा अगर यहूद का होता तो उसके अंदर वहां यहूद जाते, काब बिन अशरफ का था। अब होता क्या था कि यहूदी उलमा जो रिश्वत लेने में मशहूर थे वो बाज दफा लोगों से कुछ माल लेके उनके मतलब के फैसले कर देते। कभी कभी ऐसा भी होता कि मुसलमानों में कुछ मुनाफिक किस्म के लोग भी किसी मुकदमे में मुलविस होते। उनको पता था कि अल्लाह के नबी के पास आएंगे तो बात तो हक पे होगी, पकड़े जाएंगे। ऐसे मौके में वो यहूदी अदालत की तरफ जाना चाहते कि चलो कुछ ले दे के मामला खत्म हो जाएगा और हम उस वक्त आ जाएंगे। ऐसे ही मौके पे अल्लाह ताला ने एक ऐसा असूल दे दिया कि ये कैसे मुसलमान है कि जब इस्लाम से इनको फायदा मिलता है तो मुसलमानों की तरफ आते हैं, उन उलमा की तरफ भागते हैं जिन उलमा के फतवे इनके मसले को हल कर देते हैं, और उस वक्त जब इनका नुकसान होता है तो दूसरी तरफ जाते हैं। मैंने एक बात कहीं सुनी, मैं सिर्फ वही बात वैसे ही कोशिश कर देती हूँ आप तक बताऊँ, बात समझ आ जाएगी। एक साथी थे, अपने आप को हनफी कहलाते थे, ठीक है कोई बात नहीं कहलाते रहे, अब मानते रहे सारी बातें। कोई ऐसा मुकदमा घर में, ऐसा मामला आ गया कि मर्द ने तलाक दे दी और वो एक ही नशिस्त में 3 दफ़ा तलाक बोली, फिक्र हनफी के मुताबिक तो औरत मर्द का मामला ख़त्म हो गया, तोड़ना नहीं चाह रहे थे करें क्या। तो अब किसी के पास गए कि उस वक़्त क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि बस सिंपल सी बात है, आप ये कह दें कि इस मामले में मैं हनफी नहीं हूँ तो आपको तलाक नहीं होगी। ये है वो बात, अपनी मर्जी के फैसले। एक हुक्म मालूम होने के बाद फिर क्यों दूसरों से पूछते हैं? चंद सवाल जो हर आने वाले से क्यों पूछे जाते हैं? चंद खाने पीने की बातें क्यों बार बार पूछते हैं कि शायद कोई अल्लाह का बंदा ऐसा आ जाए जो अपने सर पर लेके हमारे लिए जायज़ करार दे दे। आम हालात में किसी को पूछते रहेंगे, और कुछ खास मसले हैं जिसमें पता होता है कि इसकी बात तो बड़ी सख्त होगी वो दूसरे से पूछें। तो ये फिर वही बात याद रखिए कि ये अल्लाह का दीन नहीं, ये ख्वाहिश का दीन है।